नमस्कार भारत, तारीख 11 नवंबर, दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। चुनाव प्रचार में एक दूसरे के खिलाफ रहे ओबामा ट्रंप की हुई मुलाकात। व्हाइट हाउस में ओबामा ने ट्रंप की मेजबानी की। ट्रंप ने कहा, ओबामा से मिलना सम्मानजनक।
We discussed a lot of different situations, some wonderful and some difficulties.
नरेंद्र मोदी पहुंचे जापान, क्या दोनों देशों के बीच परमाणु संधि पर प्रगति होगी?
कुछ उम्मीदें जो हैं वो पूरी होंगी, मगर जो न्यूक्लियर डील है वो तो अभी होगी नहीं। साइन करने का मतलब नहीं है कि वो शुरू हो जाएगी और हमारी कंपनियां पैसा कमा सकती हैं।
पंजाब से पानी की लड़ाई जीता हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के कानून को किया संवैधानिक घोषित। खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार व्हाइट हाउस में मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की। दोनों ने सत्ता के हस्तांतरण के अलावा घरेलू और विदेश नीति पर भी चर्चा की। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने ओबामा की कई नीतियों की काफी आलोचना की थी। वहीं ओबामा ने भी ट्रंप की शख्सियत पर सवाल उठाए थे, लेकिन इस मुलाकात में दोनों का रवैया दोस्ताना रहा। बराक ओबामा ने कहा कि वो ट्रंप की हर मुमकिन मदद करेंगे, तो वहीं ट्रंप ने कहा कि वो अपने कार्यकाल के दौरान बराक ओबामा की सलाह लेते रहेंगे। हंगरी के दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री विक्टोर ओरबान ने कहा है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के लिए बेहतर साबित होंगे। उन्होंने बुडापेस्ट में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ट्रंप का चुना जाना उदारवादी अलोकतांत्रिक दुनिया के अंत की दस्तक है। ओरबान ने कहा, ट्रंप का चुना जाना इस बात का संकेत है कि पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति एक खास किस्म की विचारधारा की गिरफ्त से आज़ाद हो रही है। ये बात पश्चिमी सभ्यता के लिए बहुत अच्छी है कि हम एक भ्रम से निकलकर सच्चाई की ओर जा रहे हैं। हम उस युग में जी रहे थे जिसे उदार अलोकतांत्रिक युग कहना ठीक होगा। अब हम सच्चे लोकतंत्र की तरफ लौट रहे हैं। ये थे हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टोर ओरबान के शब्द, जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत को दुनिया के लिए अच्छा संकेत मान रहे हैं। कनाडा और मेक्सिको ने कहा है कि वो उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता यानी नेफ्टा पर अमेरिका से फिर चर्चा के लिए तैयार हैं। ये अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच का व्यापार समझौता है और अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसकी कड़ी आलोचना करते रहे हैं। अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान ट्रंप ने कई बार कहा था कि ये समझौता अमेरिकी हितों के खिलाफ है। ट्रंप कहते रहे हैं कि वो चुने जाते हैं तो समझौते की शर्तों पर या तो दोबारा विचार करेंगे या इस समझौते को ही खत्म कर देंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो समझौते पर अमेरिका से फिर बातचीत के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान के मजार ए शरीफ शहर में जर्मन वाणिज्यिक दूतावास में हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरे ट्रक से दूतावास की इमारत में टक्कर मार दी। एक अस्पताल के अधिकारी ने बताया कि हमले में 80 लोग घायल हुए हैं। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सीरिया में काम कर रहे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक युद्धग्रस्त अलेप्पो में फंसे लोगों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री बस अब खत्म होने को है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिर से राहत सामग्री नहीं भेजी तो अगले सप्ताह से वहां के लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। बीबीसी समाचार।
स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में। आज मैं हूं आपके साथ मोहनलाल शर्मा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों के परिणामों के आने से पहले दो जो चेहरे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, आज मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हुए दिखे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में न्योता दिया और उनसे सत्ता हस्तांतरण, विदेश नीति के अलावा दूसरे कई मुद्दों पर चर्चा की। ओबामा ने मुलाकात के बाद कहा कि वो ट्रंप के रवैये से खासे प्रभावित हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ओबामा से मुलाकात को अपने लिए सम्मान बताया और उम्मीद जाहिर की कि ओबामा आगे भी उन्हें सलाह देते रहेंगे। दोनों की मुलाकात कैसी रही, बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए प्रभात पांडे से।
व्हाइट हाउस में बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात बड़े दोस्ताना अंदाज में हुई और कम से कम दोनों को देखकर ये नहीं लगा कि पिछली कड़वाहट का इस मुलाकात पर कोई असर रहा। डेढ़ घंटे तक चली बैठक के बाद राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि वो नए राष्ट्रपति की कामयाबी के लिए जो भी मदद मुमकिन होगी करेंगे, क्योंकि ट्रंप की कामयाबी में ही अमरीका की कामयाबी छिपी है।
My number one priority in the coming two months is to try to facilitate.
मेरी पहली प्राथमिकता है नए राष्ट्रपति को सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित कराना। मैं डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से बेहद उत्साहित हूं। वो अमेरिका की चुनौतियों को सुलझाने के लिए मेरे और मेरी टीम के साथ काम करने के इच्छुक हैं। यही हमारे लिए बेहद अहम है कि हम चाहे किसी भी विचारधारा को मानने वाले हों, लेकिन हमें साथ मिलकर काम करना है और उन मुश्किलों को हटाना है जो अमेरिका के सामने हैं। ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। डोनाल्ड ट्रंप भी बराक ओबामा की मेजबानी से बड़े खुश दिखे। उन्होंने कहा,
We discussed a lot of different situations, some wonderful and some difficulties.
हमने अमेरिका की उपलब्धियों के साथ साथ मौजूदा चुनौतियों पर भी चर्चा की। मैं अमेरिका के हित के लिए राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। उनसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात रही और मुझे उम्मीद है कि आगे भी उनसे लगातार इस तरह की मुलाकातें होती रहेंगी। ये थे अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा की अमेरिकी नागरिकता पर सवाल उठाए थे। यही नहीं, ट्रंप उनकी कई महत्वपूर्ण नीतियों को खत्म करने का वादा भी कर चुके हैं। दूसरी ओर राष्ट्रपति ओबामा ने भी चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप को पद के अयोग्य करार दिया था, लेकिन व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जो अर्नेस्ट ने बताया कि बीती बातों की छाया इस मुलाकात में नजर नहीं आई। अर्नेस्ट ने कहा,
I feel confident in telling you that they did not resolve all their differences. I also feel confident in telling you they didn't try to resolve all their differences.
मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने अपने पिछले मतभेद न तो सुलझाए और न ही ऐसा करने की कोई कोशिश की। दोनों नेताओं ने आगे की बात की। दोनों का रवैया देखकर लगा कि ये मुलाकात उतनी भी अजीब नहीं रही जितनी कई लोगों ने आशंका जताई थी। ये थे व्हाइट हाउस प्रवक्ता जो अर्नेस्ट। इस बीच अमेरिका के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ओबामा और हिलेरी क्लिंटन दोनों ने बुधवार को जनता से अपील की थी कि वो ट्रंप को नेतृत्व का मौका दें।
तो अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव अभियान के दौरान रिपब्लिकन हिंदू कोएलिशन के एक कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं और भारत से अच्छे संबंधों के बारे में कहा था। इस कार्यक्रम के पीछे भारत से अमरीका जा बसे उद्योगपति शलभ कुमार थे। अब सबकी नजरें इस पर हैं कि ट्रंप करते क्या हैं और विशेष रूप से भारत के संदर्भ में उनकी सोच क्या है। हमारे सहयोगी विनीत खरे ने शलभ कुमार से अमेरिका में बात की।
आने वाले 100 या 200 दिनों में प्रायोरिटीज क्या होंगी डोनाल्ड ट्रंप सरकार की?
नंबर वन जो है काम जो करना है प्रेसिडेंट ट्रंप, ही हैज टू रिपील एंड रिप्लेस ओबामा केयर। उसके बाद में तो सभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को रद्द करना है। उसके बाद में ही वांट्स टू पे बिग अटेंशन टू इंक्रीजिंग ट्रेड विद इंडिया। बहुत आर्टिफिशियल बैरियर्स हैं इस वक्त, क्योंकि एक वक्त अमेरिका की पॉलिसी से ये देखते थे कि इंडिया जो है रशियन और सोवियत यूनियन एलाई है, तो उसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट वुड फेवर पाकिस्तान। अमेरिकन लॉ है, नो मैटर हाउ मच मनी यू आर विलिंग टू पे, इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट बाय एडवांस्ड वेपन सिस्टम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स।
मतलब अगर एडवांस्ड वेपन है पाकिस्तान से ज्यादा तो आप उसे अमेरिका से नहीं खरीद सकते, ये कानून है।
ये लॉ है, हमारी पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी, अब जो उसकी टोटल ये कांग्रेस में भी, पार्लियामेंट में भी और एग्जीक्यूटिव ब्रांच प्रेसिडेंट में भी अब जो हमारी गवर्नेंस होगी, तो हमारी पार्टी तो उसको लॉ को टू नलिफाई दैट, वी हैव बीन रेडी फॉर लॉन्ग टाइम।
डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के आपस में केमिस्ट्री कैसी है, क्योंकि हमने देखा कि ट्वीट्स किए नरेंद्र मोदी ने?
अभी तक उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई है, तो जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो मोदी जी के लिए जानते हैं दैट इज थ्रू मी। मोदी जी का जो है उनका भी गोल जो है वो वैसा ही है जैसे डोनाल्ड ट्रंप का है, तो उनकी जो है आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होगी।
पाकिस्तान को लेकर आपको लगता है कि ट्रंप सरकार की क्या नीति होगी?
फॉरेन एड टू पाकिस्तान जो चलती है वो तो बंद होगी, उसमें विद इन द फर्स्ट 180 days और सो फोर्थ. तो अब तो हमने पहले वी हैव बीन एबल टू कट दैट फॉरेन एड टू पाकिस्तान. नाउ दिस विल गेट एलिमिनेटेड, और इफ इट इज गिवन इट विल बी गिवन ओनली इफ दे गेट रिड ऑफ द मद्रासास.
आप कह रहे हैं जब तक मदरसा नहीं खत्म होते पाकिस्तान में तब तक फॉरेन एड अमेरिका की तरफ से नहीं दी जाएगी.
यही हमारा जो है, दैट इज व्हाट वी वांट टू डू.
जो मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज हैं, वो इस सरकार से क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं अमेरिका में वो भी देख रहे हैं. ये जो डर है कि क्या हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, जो मुस्लिम है वो क्या एक्सपेक्ट रखें, या माइनॉरिटीज है क्या एक्सपेक्ट करें इस सरकार से.
आई विल गिव दिस मैसेज टू ऑल भारतीय मुस्लिम्स, यू आर टैलेंटेड इन एज एन इंजीनियर, एज ए डॉक्टर. उनका कोई डर नहीं की बात नहीं, उनको तो बहुत ही और एनकरेजमेंट मिलेगी कि यूएस में आए, बिकॉज वी वांट टैलेंट.
भारत को लेकर ट्रंप की रणनीति और भविष्य की योजनाओं के बारे में बता रहे थे अमेरिका में बसे भारतीय उद्योगपति शलभ कुमार.
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर.
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 3 दिनों की यात्रा पर राजधानी टोक्यो पहुंचे हैं, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया है. 2 सालों में नरेंद्र मोदी की ये दूसरी जापान यात्रा है. भारत की मेक इन इंडिया और दक्षिण एशियाई देशों से संबंध सुधारने की अपनी नीतियों के लिए जापान के साथ साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है. नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में व्यापार, निवेश और सुरक्षा मामलों में सहयोग बढ़ाने के अलावा दोनों देशों के बीच परमाणु संधि पर हस्ताक्षर पर भी प्रगति होने की खबरें हैं. विनीत खरे ने टोक्यो में सोका विश्वविद्यालय में एशिया व अमरीकी मामलों के जानकार प्रोफेसर मुकेश विलियम से बात की और पूछा कि इस यात्रा से कितनी उम्मीदें रखी जाएं.
कुछ उम्मीदें जो है वो पूरी होंगी, मगर इंडिया के मीडिया में चीजें हम देख रहे हैं वो मेरा ख्याल है मुश्किल है होना. जैसे कि जो न्यूक्लियर डील है वो तो अभी होगी नहीं. साइन करने का मतलब नहीं है कि वो शुरू हो जाएगी और हमारी कंपनियां पैसा कमा सकती हैं या जापान की कंपनियां पैसा. वो 217 में वो संसद में पास हो उसके बाद ही शुरू होगा. और दूसरी बात ये है, ये जो न्यूक्लियर डील है ये तो काफी पुरानी है, 6 साल से चल रही है. जापान के मीडिया ने अभी कहीं नहीं इसके बारे में बात की है. एक जगह बस सिर्फ बात की है, वो ये कि अगर हिंदुस्तान जो है जो कंडीशन है वो नहीं फॉलो करेगा तो हम इसको रद्द कर देंगे. मगर जापान के साथ पास अब ये कई समस्याएं हैं कि इसको कैसे पास करेंगे. एलडीपी के अंदर भी लोग जो हैं वो खिलाफ हैं कुछ इसके बारे में, और आम जनता जो है 70% जो है वो नहीं चाहती है कि इस तरीके का कोई समझौता हो. न्यूक्लियर के बारे में फुकुशिमा आपने देख ही लिया है और उसके बाद तो और भी तकलीफ है.
इसे फिर कैसे देखा जाए, इस विजिट को कई लोग इसको चीन के प्रिज्म से देख रहे हैं.
मेरा ख्याल है चीन के प्रिज्म से देखना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि नहीं देखना चाहिए. मगर जो जापान है वो चाहता है कि मोदी जो है वो चीन के खिलाफ बोले कुछ और जापान को सपोर्ट दे ईस्ट चाइना सी के सिलसिले में. मगर मेरा ख्याल नहीं है कि मोदी ये करेंगे. इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो 70 बिलियन डॉलर का है, जापान और चाइना का 350 बिलियन है. अब आप देख लीजिए इसमें हमारा सिर्फ 14.5 है. और अगर बात तो अलग है, अगर हम इसको बढ़ाएंगे जो कि मोदी साहब चाहते हैं और बढ़े अगर तो इससे फायदा है. दूसरी बात यह है जो जापान की कंपनियां हिंदुस्तान में गई हैं और उनका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं रहा है. जैसे रणबक्सी और दाइची संख्यो का है कि टूट गया, एनटीटी डोकोमो टाटा का है वो खत्म हो गया, मित्सुबिशी केमिकल पुल आउट हो गया वेस्ट बंगाल से. तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसका इम्पैक्ट बहुत हुआ है.
नरेंद्र मोदी ऐसे वक्त जापान जा रहे हैं जब जापान आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत नहीं है. भारत को कहा जा रहा है कि बहुत तेज रफ्तार में बढ़ रहा है, इससे जापान की क्या उम्मीदें होंगी भारत से.
जापान 20 साल से इकोनॉमिक डिप्रेशन में दलदल में फंसा हुआ है. अब आबे साहब अपनी आबेनॉमिक्स के बारे में चाहते हैं कि भाई जापान में को उन्नति हो और लोग बाहर इन्वेस्ट करें पैसा और उससे फायदा हो। वो मिडिल क्लास देख रहे हैं, इतना बड़ा मिडिल क्लास है हिंदुस्तान में, अगर ये होता है यहाँ की कंपनियां जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकें। जैसे आप न्यूक्लियर रिएक्टर में देखिए, हिताची है, तोशिबा है, वेस्टिंग हाउस है, मित्सुबिशी है, अगर हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट हो जाए तो थोड़ा सा थोड़ी सी राहत मिलेगी।
नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान क्या कुछ हो सकता है, विश्लेषण कर रहे थे प्रोफेसर मुकेश विलियम्स। माना जा रहा है कि मोदी की इस यात्रा में जापान की शिनमायावा इंडस्ट्रीज से 12 राहत विमानों को खरीदने पर बातचीत में प्रगति हो सकती है। 2014 में भी जब नरेंद्र मोदी टोक्यो में थे तब भी इस विमान को खरीदने पर चर्चा हुई थी। क्या खास बात है इन विमानों की और क्या इस यात्रा में विमान की खरीद पर बात पूरी हो सकती है, यही जानने के लिए विनीत खरे ने बात की रक्षा मामलों के जानकार राहुल बेदी से।
जरूर फाइनलाइज हो सकती है और पिछले कुछ दिनों में इसकी जो चर्चा है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी डिस्कस की और इसका जो एक्विजिशन है वो सोमवार को ही डिस्कस हुआ और ये डिस्कशन के तहत लगभग 12 हवाई जहाज लिए जाएंगे, 2 कंप्लीटेड फॉर्म में फ्लाई अवे कंडीशन में और 10 जो हैं वो यहाँ हिंदुस्तान में लाइसेंस बिल्ड होंगे। और ये 12 पे नहीं रुकेगी बात, क्योंकि ये नेवी के लिए भी हैं, कोस्ट गार्ड के लिए भी हैं, आर्मी भी चाहती है इनको और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी चाहती है, क्योंकि ये जो जहाज है ये हिंदुस्तान की जो कैपेबिलिटी है और जो इसकी रीच है इसको काफ़ी हद तक बढ़ाएगा। और इसकी बात 2010 से चल रही है मगर ये पिछले 6 साल से ये काफ़ी डामाडोल रहा है, मगर अब उम्मीद है कि शायद ये पक्का हो जाए।
अभी स्टेटस क्या है, आपको लगता है कि ये सिग्नेचर होंगे फाइनल सिग्नेचर कि नहीं?
फाइनल सिग्नेचर होने में अभी टाइम है। मोदी साहब जब जाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट जाता है वो डील साइन नहीं करके आता, साइन तो ऑफिशियल्स करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, मगर अभी जो प्रोसीजर्स हैं जैसे टेंडर है या प्राइस निगोसिएशन है, अभी प्राइस पे भी बात रुकी हुई है क्योंकि जापान ने पीछे 2-3 महीने पहले इसकी प्राइस भी थोड़ी रिड्यूस की, क्योंकि हिंदुस्तान पहले कह रहा था कि ये बहुत महंगा है जहाज। मोदी साहब साइन तो मेरा ख्याल ये करके नहीं आएंगे, मगर शायद उनको अश्योरेंस दे दें कि ये बात अगले कुछ महीनों में फाइनलाइज की जाएगी।
और यहाँ पे अगर हम प्राइस की बात करें तो हम कितने प्राइस की बात करें, अगर ब्रॉड फिगर बता पाए आप?
लगभग 113 या 115 मिलियन डॉलर का हवाई जहाज है।
अगर हम 5-6 फीचर्स बता दें जिसके लिए हिंदुस्तान में कि हर कोई चाहता है।
इसकी जो रेंज है रफली वो 4,700 किलोमीटर है। अगर आपका जहाज कहीं दूर है तो उसको सप्लाई कर सकता है, उसके अगर जहाज में कोई बीमार हो गया या कोई इमरजेंसी पड़ गई तो उसको वापस भी ला सकता है। और ये किसी भी कंडीशन में, किसी भी टेरेन में, किसी भी ऑल्टीट्यूड पानी में ये लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है। तो ये एक बहुत ही मल्टीपर्पस एयरक्राफ्ट है और इसकी जो एडवांटेज है लैंड पे भी पानी पे भी वो दुनिया में सबसे बेहतर है। इसकी ऑफेंसिव यूज तो नहीं हो सकती, इसकी खास करके ह्यूमैनिटेरियन और रेस्क्यू मिशंस में, जैसे सुनामी हुआ था कुछ साल पहले उसमें इसका इस्तेमाल बहुत हो सकता है। अगर कोई जहाज आपका इंडियन ओशन में है 3-4 दिन दूर हिंदुस्तान से, तो अगर उसका कुछ खराब हो गया तो ये उसको स्पेयर पार्ट पहुंचा सकता है बहुत जल्दी।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में जापान से 12 राहत विमानों को खरीदने पर बातचीत में प्रगति हो सकती है। ये थे रक्षा मामलों के विशेषज्ञ राहुल बेदी। उच्चतम न्यायालय ने नदियों के पानी के बंटवारे से जुड़े सतलज यमुना लिंक समझौते को रद्द करने के पंजाब के 2004 के कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अदालत ने कहा कि पंजाब पड़ोसी राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली व चंडीगढ़ के साथ पानी के बंटवारे के समझौते को रद्द करने के लिए एक तरफा निर्णय नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पंजाब के खिलाफ आने के बाद कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस मामले पर राज्य में राजनीति गर्म है। सुनिए अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को किसी न किसी तरीके से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। बताते चलें कि 1966 में पंजाब के बंटवारे के बाद हरियाणा और पंजाब में पानी के बंटवारे को लेकर विवाद तब से ही हो गया था। 1981 में केंद्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए दोनों राज्यों में समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन मामला कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट के आदेश अनुसार हरियाणा ने अपने हिस्से की नहर का निर्माण तो कर लिया, लेकिन पंजाब ने ऐसा नहीं किया और पंजाब सरकार ने तो एक फैसला लेते हुए पानी का समझौता ही रद्द कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार अपने तौर पर विधेयक पास कर इस समझौते को रद्द नहीं कर सकती। बस इसके बाद कांग्रेस के प्रधान और अमृतसर के मेंबर पार्लियामेंट कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और कहा कि पंजाब कांग्रेस के विधायक भी इस्तीफा देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना था,
मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि पंजाब का पानी बचाने के लिए हमने साल 2004 में जो कानून बनाया था, पंजाब की अकाली सरकार उसकी सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं कर पाई और फैसला पंजाब के विरोध में गया। मैं लोकसभा से इस्तीफा दे रहा हूं, साथ ही हमारे सारे विधायक भी इस्तीफा दे रहे हैं। हम फिर से लोगों के बीच में जाएंगे और 2/3 बहुमत से चुनकर दोबारा से कानून बनाएंगे ताकि पंजाब के पानी और लोगों की रक्षा कर सकें।
फैसले के विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर स्पष्ट किया कि वे पंजाब के हिस्से का पानी किसी और राज्य को नहीं देंगे और ना ही नहर का निर्माण होने देंगे। पंजाब सरकार ने इस मुद्दे पर 16 नवंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है और साथ ही अकाली दल ने ऐलान किया है कि वे 8 दिसंबर को मोगा में एक बड़ी रैली करेंगे। सुखबीर सिंह बादल का कहना था,
मैं उन स्पष्ट करना चाहूंगा, आप पंजाब का पानी पंजाब की जान है, पंजाबियों का अगला फ्यूचर।
मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि पंजाब का पानी पंजाब की जान है, पंजाबियों का भविष्य है। अकाली दल इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। हम ना तो पानी की एक बूंद किसी को देंगे, ना ही किसी को यहाँ घुसने देंगे।
अब इस मसले को लेकर आम आदमी पार्टी भी पीछे क्यों रहे? राज्य में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कई जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर कांग्रेस और अकाली दल दोनों को ही दोषी करार दिया है और ऐलान किया है कि वे आज से ही पंजाब के पानी की रक्षा के लिए मोर्चा लगा देंगे। आम आदमी पार्टी के पंजाब के कन्वीनर गुरप्रीत सिंह वड़ैच कहते हैं,
आम आदमी पार्टी दा स्टैंड मैं दस रहा कि असीं ये फैसला कीता कि असीं कपूरी पिंड जिथे
आम आदमी पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम कपूरी गांव में धरने पर बैठेंगे। यहां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चांदी का फावड़ा इंदिरा गांधी को भेंट कर सतलज यमुना लिंक की शुरुआत कराई थी। वो पंजाबी लोगों के शरीर पर एक घाव था। हम तब तक धरने पर बैठेंगे जब तक कि पंजाब के हक में फैसला नहीं आ जाता।
बात चाहे पंजाब हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां का निशाना राज्य में होने वाले विधानसभा इलेक्शन पर है जो 2017 में होने वाले हैं। इस मुद्दे को कौन कितना भुना पाता है अब यह समय ही बताएगा।
ये रिपोर्ट रविंदर सिंह रॉबिन की थी। तो पंजाब सरकार का कानून असंवैधानिक घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। कार्यक्रम में यहाँ पर अखबारों का जिक्र करते हैं, अखबार पढ़ चुके हैं प्रभात पांडे। प्रभात, क्या क्या खबरें हैं अखबार में?
जी मोहनलाल जी, तकरीबन सभी अखबारों में नोट डोनाल्ड ट्रंप की खबर के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा के बीच जो पानी का विवाद है उसके तहत जो फैसला दिया है उसको लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है।
मतलब पहले कावेरी जल विवाद चल रहा था और अब ये
पंजाब सतलज। जी जी, तो हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को जगह दी है जिसमें कहा गया कि पंजाब विधानसभा का साल 2004 में पारित किया गया वो कानून गैर कानूनी है जिसमें हरियाणा को पानी ना देने का प्रावधान है। अखबार ने फैसले के बाद पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के उस बयान को भी छापा है जिसमें बादल ने कहा है कि कोर्ट के फैसले के बावजूद एक बूंद पानी भी पंजाब से बाहर नहीं जाने देंगे। दरअसल पंजाब में जल्दी चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में राज्य की सभी पार्टियां चुनाव के मद्देनजर कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जता रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भी ये खबर छापी है जिसमें इसके साथ ही इस खबर के साथ एक तस्वीर भी छापी है जिसमें चंडीगढ़ में एक समारोह हो रहा है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दोनों उस तस्वीर में साथ साथ नजर आ रहे हैं लेकिन बड़े तल्खी भरे अंदाज में एक दूसरे को देख रहे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है कि 500 और 1000 रुपए के जो पुराने नोट हैं उनको एक्सचेंज कराने गए लोगों की भारी भीड़ है और नोएडा के एक बैंक के बाहर की तस्वीर छापी है जहां नोट बदलने आए लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। क्या आपके
पास? हाँ हाँ, जनसत्ता है, इसमें एक कार्टून छपा है जिसमें जो लोग टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, वो लोग जा रहे हैं बैग लेके पैसा, और वो कह रहा है आ जाओ स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक जाने वाले लोग सब एक सवारी बना।
जी जी जी, ज्यादातर लोगों की भीड़ बैंकों की तरफ ही जा रही है।
हाँ।
टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दिलचस्प खबर यह है कि मंत्रियों के एक समूह ने एक प्रस्ताव को लगभग मंजूरी दे दी है जिसके तहत भ्रमित करने वाले विज्ञापनों में अगर कोई सेलिब्रिटी काम करता है तो उस पर भी 10 लाख रुपए के जुर्माने और 1 साल तक के बैन का प्रावधान है। साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया में कर्नाटक की एक खबर छपी है कि टीपू जयंती समारोह के दौरान कर्नाटक के शिक्षा मंत्री तनवीर सैत जो है वो अपने मोबाइल पर पोर्न क्लिप देखते हुए पकड़े गए,
और इस तरह की एक घटना पहले भी प्रकाश में आ चुकी है।
जी जी, इसके अलावा दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसको कड़ी फटकार लगाई और उससे कहा है कि क्या आप लोगों के मरने का इंतजार कर रहे हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात पांडे। और कार्यक्रम में अब सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। राजकोट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है जहां कल दूसरे दिन भी बल्लेबाजों का राज रहा। कल इंग्लैंड की पहली पारी 537 रन के विशाल स्कोर पर समाप्त हुई जिसके जवाब में भारत ने खेल समाप्त होने के समय तक बिना किसी नुकसान के 63 रन बना लिए थे। इस टाइम के समय मुरली विजय 25 और गौतम गंभीर 28 रन बनाकर खेल रहे थे। इससे पहले कल इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 311 रन से आगे खेलना शुरू किया। 99 रन पर पहले दिन नाबाद रहने वाले मोइन अली अपने टेस्ट करियर का 4th शतक बनाते हुए 117 रन बनाकर मोहम्मद शमी की गेंद पर बोल्ड हुए। उनके साथ पहले दिन 19 रन बनाकर खेलने वाले बेन स्टोक्स ने भी अपने टेस्ट करियर का 4th शतक जमाते हुए 128 रन बनाए। इससे पहले जो रूट ने भी पहले दिन 124 रन बनाए थे। इनके अलावा जॉनी बेरस्टो ने 46 और जफर अंसारी ने 32 रन बनाकर भारतीय गेंदबाजों की नाक में दम किए रखा। रविंद्र जडेजा ने 86 रन देकर 3, उमेश यादव ने 112 रन देकर 2, मोहम्मद शमी ने 65 रन देकर 2 और आर अश्विन ने भी 167 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। कल मैच के बाद रविंद्र जडेजा ने माना कि टीम ने काफी कैच छोड़े जो महंगे साबित हुए।
क्रिकेट में वो तो चलता ही आया है कि जिस दिन कैच कोई भी बैट्समैन का छूटता है, बहुत बार ऐसे हुआ है कि वो बैट्समैन ने 100 रन बनाया। ऐसे ही हुआ कि उनके काफ़ी बैट्समैन के कैच छूटे और ये बैन स्ट्रोक के भी बहुत चांसेस मिले, 2-3 बीच में गिर गए, 2-3 कैच छूटे।
पहली पारी के आधार पर भारत अभी भी 474 रन पीछे है और उसके 10 विकेट बाकी हैं। उधर मुलापाडू में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेट टीम को कल बेहद आसानी से 6 विकेट से हरा दिया। भारतीय महिला टीम के सामने जीत के लिए 132 रनों का लक्ष्य था जो उसने कप्तान मिताली राज के नाबाद 46 और वी कृष्णा मूर्ति के नाबाद 52 रन की मदद से 39.1 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मिताली राज और वी कृष्णा मूर्ति के बीच नाबाद 97 रनों की साझेदारी हुई। इससे पहले वेस्टइंडीज की कप्तान स्टेफेनी टेलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनकी पूरी पारी राजेश्वरी गायकवाड़ और एकता बिष्ट की घातक गेंदबाजी के सामने केवल 131 रन पर ढेर हो गई। राजेश्वरी गायकवाड़ ने 21 रन देकर 4 और एकता बिष्ट ने 14 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। वहीं श्रीलंका ने हरारे में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 257 रन से करारी मात दी। जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए 491 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उसकी दूसरी पारी 233 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही श्रीलंका ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम की।
खेल समाचार आपने सुन लिया, और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में नए राष्ट्रपति चुने जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार व्हाइट हाउस में मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की। बराक ओबामा ने मुलाकात के बाद कहा कि वो ट्रंप की हर मुमकिन मदद करेंगे, तो वहीं ट्रंप ने भी कहा कि वो अपने कार्यकाल के दौरान बराक ओबामा की सलाह लेते रहेंगे। कनाडा और मैक्सिको ने कहा है कि वो उत्तरी अमरीका मुक्त व्यापार समझौता यानी नेफ्टा पर अमरीका से फिर चर्चा करने के लिए तैयार है। अमरीका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते समझौते की अपने प्रचार के दौरान कड़ी आलोचना करते रहे हैं। अफगानिस्तान के मजार ए शरीफ शहर में जर्मन वाणिज्यिक दूतावास में हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और 80 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरे ट्रक में दूतावास की इमारत में टक्कर मार दी। सीरिया में काम कर रहे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक युद्धग्रस्त अलेप्पो में फंसे लोगों को दी जाने वाली राहत सामग्री खत्म होने को है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। घंटे भर बाद विश्व भारती कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।